ओम शांति। चैप्टर 6 मैथ्यू सर्मन ऑन द माउंट। तो कल हमने देखा था, यदि कोई अपराध करे तो तुम क्या करो, उसे क्षमा कर दो, क्योंकि 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 तुम्हारे पिता ने भी तुमको क्षमा किया है, इसलिए तुम भी क्षमा कर दो। आज आगे 16वां, जब तुम उपवास करो। आज उपवास के विषय में फास्ट, जब तुम क्या करो, उपवास करो। तो कैसे करो उपवास? तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। Moreover, when ye fast, be not as the hypocrites of the sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, they have their rewards. वो कहता है कि जब तुम उपवास करो तो ऐसा नहीं कहो कि दूसरों को पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। दिखावे के लिए कोई उपवास नहीं करना है। खाना नहीं खा रहे और उदासी छाई हुई है, फिर दूसरा पूछेगा क्या हुआ, फिर कहोगे कि मैं आज उपवास कर रहा हूं। ऐसा उपवास कोई काम का नहीं है। अगर कोई ऐसा उपवास करता है तो उसको यहां का फल यही मिल गया, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। वो कहता है ये हिपोक्रिट्स है, खुद को धोखा देने वाले है, ढोंगी है, आत्मवंचना करने वाले। तो ऐसा उपवास कोई काम का नहीं है जिसमें अंदर ही अंदर इच्छा है खाने की और ऊपर से खा नहीं रहे और उदासी सी छाई हुई है, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, लोगों को पता चले कि हम उपवास कर रहे हैं आज। यह दिखावे का भाव है उपवास करने में भी। तो उपवास हर धर्म में है, हर धर्म में, यहूदी धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम में उपवास, बहाई फेत में उपवास, जैन धर्म में तो उपवास का बहुत ही ज्यादा महत्व है, हिंदू धर्म में एकादशी से लेकर तो पूरा हफ्ते भर, सोमवार को इसका उपवास, गुरुवार को विष्णु, सोमवार को शिव, बुधवार को तो हर दिन कुछ ना कुछ उपवास चलते ही रहता है, व्रत उपवास बहुत ज्यादा है। तो हिंदू धर्म में उपवास, बौद्ध धर्म में उपवास का बहुत महत्व है। महात्मा बुद्ध ने कहा है अपने भिक्षुओं को कि दोपहर के बाद कुछ खाना नहीं है। वो खुद बताते हैं मैं दोपहर के बाद कुछ नहीं खाता हूं इसलिए मेरा स्वास्थ्य ठीक है। ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट है महात्मा बुद्ध के धम्मपद में कि आई डू नॉट ईट एनीथिंग इन द इवनिंग एंड दैट कीप्स मी हेल्दी, और वो मुझे स्वस्थ रखता है। एक ही टाइम, साधना के समय तो और ज्यादा। भीष्म पितामह को युधिष्ठिर ने, जब वो बाणों की शैया में लेटे हुए थे, भीष्म पर्व महाभारत, वो पूछता है युधिष्ठिर सबसे बड़ा तप कौन सा है, भीष्म पितामह कहते हैं उपवास, एब्स्टिनेंस फ्रॉम फूड, क्योंकि उसमें संयम आ जाता है। इस्लाम धर्म रमादान, रमजान के समय सुबह से लेकर शाम तक संयम, और वो केवल भोजन से ही नहीं, विचारों के लिए भी कहा हुआ है। तो उपवास का हर धर्म में महत्व है, हर धर्म में, क्योंकि हर धर्म संयम सिखाता है। अच्छा, तो जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, हिपोक्रिट्स के जैसे तुम्हारे सैड मुख ना हो। फॉर दे डिसफिगर देयर फेसेस, क्योंकि वो अपना मुंह बनाते ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, दिखावे के लिए, लोग पूछे ऐसी युक्ति या रचना की जिससे लोग सामने से पूछे कि क्यों भाई आज तुम खा क्यों नहीं रहे हो, आज हमारा उपवास है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके, यही मिल गया उनको जो मिलना था, उधर कुछ नहीं मिलने वाला। परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, बट धाउ वेन धाउ फास्टेस्ट एनॉइंट थाई हेड एंड वॉश थाई फेस। ऐसा दिखने ही नहीं दो किसी को कि तुम उपवास कर रहे हो, इतना खुशी खुशी से रहो, मुंह धो लो, वो कह रहा है, तेल मल लो मुंह के ऊपर, मेकअप कर लो अच्छा ताकि किसी को ये ना पता चले कि तुम उदास ना दिखे सामने से, कि ऐसा दुखी ना दिखे, खुशी खुशी से ऐसा उपवास करो। और आगे, ताकि लोग नहीं परंतु तेरे पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, इस दशा में तेरे पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। दैट थाउ अपीयरेस्ट नॉट अनटू मेन टू फास्ट बट अनटू थाई फादर विच इज इन सीक्रेट एंड थाई फादर विच सीएथ इन सीक्रेट शैल रिवॉर्ड दी ओपनली। गुप्त रूप से उपवास करो, किसी को पता ही ना चले कि हम उपवास कर रहे हैं, उपवास का दिखावा ना हो, ढोंग ना हो। और ऐसा जो उपवास करेगा वो तुम्हारे जो पिता है, परम पिता, ईश्वरीय पिता, वो तुमको देखेगा, क्योंकि वो गुप्त में ही देखता है। वो जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो नहीं देखता है, वो जो गुप्त है वो देखता है। अनटू थाई फादर विच इज इन सीक्रेट एंड थाई फादर विच सीएथ इन सीक्रेट, तुम्हारा पिता सीक्रेट में देखता है बहुत ही गुप्त रीति से, शैल रिवॉर्ड दी ओपनली, फिर तुमको इसका पारितोषिक मिलेगा इस उपवास का। तो ये बात है उपवास की। उपवास अर्थात फास्ट अर्थात उपवास मतलब क्या? उपवास समीप रहना, पास रहना। उपवास का अर्थ है भगवान के समीप रहना, और जब व्यक्ति उसके समीप रहता है अपने आप यहां की चीजों से विरक्त हो जाता है। तो भोजन से दूर रहना यह परिणाम होता है उसका, परंतु यहां जो संसार में उपवास करते उसमें तो और ही नए नए व्यंजन बनाते उपवास के अलग से, पहले भी और बाद में, और सारी बुद्धि उसी में लगी रहती है तो ये कैसा उपवास है? उपवास का मुख्य अर्थ ही खो गया है। भक्ति मार्ग में जितनी भी चीजें हैं आज जिस तल पर बनी है वो सब डाइल्यूटेड है, उनके वो अर्थ है ही नहीं जो थे पहले, इसके लिए वो उसे उपवास नहीं कहा जाता। तो उपवास से क्या फायदे होते हैं? एक उपवास तो भोजन का है जिसे सामान्य अर्थों में माना जाता है, पर केवल वही उपवास नहीं, उपवास बहुत व्यापक शब्द है, बड़ा शब्द है। भोजन के संबंध में उपवास रखने से क्या होता है? तो उपवास से क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा इंप्रूव हो जाता है, उसको रेस्ट मिल जाता है, संयम का पता चलता है, और जो इंपल्सेस है आवेग, उठने वाले आवेग, उसको कंट्रोल ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। जिसने भोजन को जीता उसने बहुत कुछ जीता, क्योंकि तरंगे उत्पन्न होती है, आवेग उत्पन्न होते, इंपल्सेस, उसको जीत लेना उपवास से बहुत सहज हो जाता है। महात्मा गांधी ने बहुत सारा लिखा है उपवास के बारे में अपनी किताबों में, और हर धर्म ने इसको सिखाया है, हर धर्म ने। उपवास करने वाला व्यक्ति सहनशील बन जाता है, क्योंकि भूख को जिसने रोका वो कोई साधारण नहीं है। उसका अन्न दूसरों किसी को भी मिल जाता है तो बीच बीच में उपवास होते रहना चाहिए। उपवास अर्थात ये नहीं, अलग अलग प्रकार के उपवास है। एक होता है कंप्लीट फुल निराहार, जिसमें पानी भी नहीं कुछ भी नहीं। एक होता है सॉलिड नहीं परंतु लिक्विड लेते हैं। एक होता है लिक्विड में कोई कोई लोग केवल पानी लेते हैं, पर कोई कोई लोग चाय कॉफी और जूस वो भी ले लेते हैं, फ्रूट एक वो भी अलग अलग प्रकार के। तो और कई सारी बीमारियां जो किसी से भी ठीक नहीं हो रही है वो अल्टीमेटली उपवास से ठीक होती है। क्योंकि उपवास केवल डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित नहीं है, उसका संबंध पूरे शरीर से है। परंतु उपवास हमेशा कोई चिकित्सक के गाइडेंस के अंदर ही करना चाहिए, नहीं तो दुष्परिणाम हो जाएगा, खड़े खड़े चक्कर और गिर पड़ेंगे और कहेंगे आपने कहा था उपवास करो और हमें आदत ही नहीं उपवास, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, आधा आधा पहले, एकदम नहीं, जूस कभी तो कभी, क्योंकि जितना हम खा रहे हैं शायद वास्तव में उतने की आवश्यकता नहीं है। ओवर ईटिंग है सब जगह पर और वही सभी बीमारियों का कारण है, जितना डाल रहे हैं। पेट को कब्र बना के रख दिया है, डाल रहे उसमें गोदाम, फुल रहता है, इससे पहले कि भूख लगे डाल देते हैं, हमेशा ही फुल रहता है। तो ये तो हो गया बहुत स्थूल, जिसको धर्म ने कहा है, सभी धर्मों में है ये, परंतु उपवास का केवल इतना अर्थ नहीं है। सूक्ष्म उपवास तो विचारों का, भावनाओं का, विकारों का, संसार के प्रलोभनों से उपवास। उपवास का संबंध वैराग से है। सब कुछ स्वतः प्राप्त होता है अगर इस तरह का उपवास करोगे तो। स्पिरिचुअल फास्टिंग इसको कहते हैं, आध्यात्मिक उपवास। केवल भोजन से संबंधित उपवास नहीं, आध्यात्मिक उपवास। और ऐसा आध्यात्मिक उपवास भी करो तो उसका भी दिखावा ना हो कि हमने ये कर दिया। अच्छा तुम ये अभी भी पीते हो, हमने तो ये कब का छोड़ दिया। घृणा भाव से भर जाता है व्यक्ति भोजन के संबंध में कि हमने जो चीज को छोड़ा और दूसरा अगर कोई उपभोग करते देखा तो हम उसको हे ये दृष्टि से देखते, जैसे किसी को हम देख रहे बाहर भोजन कर रहा है किसी होटल में, कैसी दृष्टि होती है, अरे रे रे। तो जो चीज हम छोड़ते हैं, मनुष्य का स्वभाव है कि वो समझता है कि मैं महान हूं और दूसरा कम महान है। और कुछ समय पहले तुम भी वही कर रहे थे, पर जो वो अभी कर रहा है ये भूल जाते हैं। इसके लिए भोजन के संबंध में किसी के प्रति घृणा की दृष्टि ना हो। हम यदि कुछ नहीं पीते हैं, नहीं खाते हैं और दूसरा वो पीता है खाता है तो उसके प्रति घृणा भाव ना हो। कोई नॉनवेज खाता है तो क्या उसके प्रति घृणा रखेंगे? तुम भी खाते थे अब तक, भोजन भी अहंकार का कारण बनता है कभी कभी कि हमारा भोजन श्रेष्ठ भोजन है, हम बड़ा सात्विक भोजन खाते हैं, तुम ये क्या खा रहे हो पापी कही के। तो उपवास कौन सा करना चाहिए? आध्यात्मिक उपवास। और भोजन के संबंध में भी उपवास को सीखना है। जो जानवर होते हैं उनको यदि दस्त हो जाए, बुखार आ जाए तो क्या करते हैं, वो खाना ही बंद कर देते हैं। और यहां हम लोग क्या करते हैं, और खाओ और खाओ और खाओ। उसको अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी खबर है। व्यक्ति ज्यादा खाने से बीमार है या कम खाने से बीमार है? सारी दुनिया में अध्ययन करो, ज्यादा बीमारी किस वजह से, ओवर ईटिंग की अंडर ईटिंग? पहले कम भोजन था वो अलग बात है, पर अभी तो ओवर ईटिंग है सब जगह पर। जितना ज्यादा उतना ज्यादा उसको हजम नहीं कर पाता है व्यक्ति। तो एक तो भोजन का हो गया, फिर दूसरा एक दूसरा इसमें सूक्ष्म व्रत लेना है। जैसे किसी व्रत के दिन कोई व्रत लिया जाता है तो उस दिन ज्यादा, जैसे दिवाली है तो साफ सफाई पूरी अच्छे से की जाती है एक दिन, उसी तरह हफ्ते में कोई एक ऐसा सूक्ष्म आध्यात्मिक व्रत लेना है कि आज का व्रत है श्रेष्ठ संकल्प करना है। निगेटिव संकल्प करना ही नहीं है, न करने का व्रत, दृढ़ संकल्प कर लेना आज बिल्कुल, जैसे डिजिटल व्रत लेना है। बीच बीच में डिजिटल व्रत की भी बहुत आवश्यकता है कि आज बस देखेंगे ही नहीं उसको, सुबह एक बार देख लिया, रात को एक बार देख लिया, बस अगर काम ही नहीं है उसका तो। और मधुबन में आने के बाद और जो बाहर से आते हैं उनको कुछ काम नहीं है, वो तो फुल उससे वैराग, डिजिटल वैराग आ जाना चाहिए कुछ समय के लिए। और डिजिटल व्रत, तो व्रत के दिन क्या करते, एक दिन वो भूखा रहते हैं ना, जैसे कोई सोमवार करता है शिव जी का, तो सोमवार बिल्कुल भोजन नहीं करेंगे। उसी तरह हफ्ते में ऐसा एक कोई दिन चुनना विशेष पुरुषार्थ के लिए कि जो हमारी लंबे समय से कमजोरी चल रही है वो जा नहीं रही है, हफ्ते में एक दिन केवल उसी पर काम करना है, जैसे सेंसिटिव नेचर, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, जैसे ब्लेम गेम, जैसे कोई विकार, क्रोध। ज्ञान की शक्ति क्या है और अज्ञान की शक्ति क्या है, आज का स्लोगन क्या है? ज्ञान की शक्ति, अज्ञान की शक्ति, अज्ञान की भी शक्ति है क्रोध। क्रोध यदि है तो एक दिन हफ्ते में इसके ऊपर काम करना है कि आज क्रोध मुक्त दिवस मनाना है, देखते हैं क्या होता है। व्रत, ऐसे आध्यात्मिक व्रत लेना है और दूसरों को बताना नहीं है कि आज हमारा क्रोध मुक्त दिवस है, ये आज हमारा मौन है, देखो साइलेंस बैच, अगर कोई बात करने आए तो घृणा से देखना, दिखता नहीं है क्या इधर बैच लगा हुआ है, वो बैच कभी कभी उल्टा काम करता है। तो ये हो गया उपवास के बारे में। तो ऐसा कोई ना कोई व्रत लेना है हर दिन, और रोज रोज करने से उसका महत्व कम हो जाता है, तो एक दिन कर लेना तो थोड़ा ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी। अभी आगे आगे के जो बातें हैं इसमें हमारे ज्ञान का एक गीत है, उसका संबंध है। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और कोई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। ले नॉट अप फॉर yourself treasures upon earth where moth and rust doth corrupt and where thieves break through and steal। यहां पे धन इकट्ठा मत करो जहां पर चोर चोरी कर जाए, जहां पर कीड़े उसको लग जाए, जहां पर उसको रस्ट लग जाए, जंक लग जाए, करप्ट हो जाए, यहां इकट्ठा ना करो। कहां के लिए इकट्ठा करो? परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा ना तो कोई बिगड़ता है, और जहां ना चोर ना सेंध लगाता है ना चुराता है। क्या कह रहा है वो? बट ले अप फॉर yourself treasures इन हेवर वेयर नीदर मॉथ नॉर रस्ट डोथ करप्ट एंड वेयर थीव्स डू नॉट ब्रेक थ्रू नॉर स्टील। या धन की बातें चल रही है और स्वर्ग की बातें चल रही है। जो धन कमाना है कहां कमाना है? स्वर्ग में कमाना है, स्वर्ग के लिए कमाना है। यहां का जो स्थूल धन है लोग उसके पीछे पागल है, परंतु ये धन जो है वो क्या हो जाएगा? कीड़े उसको खा जाएंगे, जंक लग जाएगा उस धन को, और वो चोर सेन लगाकर चोरी करके लेके चला जाएगा। पर तुमको जो धन कमाना है कौन सा? वहां के लिए कमाना है। अब ये जो लाइन आई है ये बाइबल की लाइन है, आगे हम जो पढ़ रहे हैं ये हमारे गीत में है ट्रैफिक कंट्रोल के। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा, जहां हमारा मन होगा वहां हमारा क्या, जहां धन है वहां मन है, यहां से लिया हुआ है उस गीत की लाइन। फॉर वेयर योर ट्रेजर इज देयर विल योर हार्ट बी ऑल्सो। जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मन होगा। तो धन कहां है? स्वर्ग में है। धन स्वर्ग के लिए जमा करना है। यह अविनाशी ज्ञान रत्न जितने ज्यादा उतने अविनाशी, उतना धन स्वर्ग में उसके पास ज्यादा होगा। स्वर्ग में साहूकार बनने की विधि यहां जिसके पास सूक्ष्म धन ज्यादा है स्वर्ग में उसके पास स्थूल धन ज्यादा होगा, यहां जिसके पास सूक्ष्म धन ज्यादा है द्वापर युग से जन्म ही ऐसे घर में होगा कि जहां कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप सब कुछ मिला हुआ होगा। नहीं तो संसार में देखो लोगों का जन्म पाई पाई के लिए कितना पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्या कुछ करना पड़ता है फिर भी कुछ मिलता नहीं। और कोई कोई देखो तो उस घर का कुत्ता देखो कैसा है, उस घर के कुत्ते को भी ठंड में देखा नकी पर वो अच्छा जैकेट उसको पहनाते हैं, और वो उधर पोलो ग्राउंड में देखो जो आवारे कुत्ते भटक रहे हैं बेचारे, उसके पास कुछ भी नहीं है। कुत्ते कुत्ते में भी कितना भाग्य है। अच्छा तो बर्थडे हेयरड्रेसर। अच्छा तो वो तो चलो जानवरों की बात है, हम व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। किसी का जन्म ऐसे घर में होता है जहां सब कुछ है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता, और किसी का घर जन्म ऐसे घर में होता है बचपन से ही जहां कुछ भी नहीं है, दूध नहीं पानी नहीं कुछ नहीं, भूखों मरता है। इसका भी सूक्ष्म कारण यहां है, सूक्ष्म धन को जमा करना है, और सूक्ष्म धन है ज्ञान। जिसके पास ज्ञान धन अधिक उसके पास वो स्थूल धन भी स्वतः ही आ जाएगा। तो यहां पर क्या कह रहा है वो, ले नॉट अप फॉर योर सेल्फ ट्रेजर्स अपॉन अर्थ, इस धरती का जो धन है उसके पीछे मत भागो, ग्रीड लोभ। और सारा ज्ञान योग के लिए समय नहीं है। लोग कहते हैं हम 12 घंटा ड्यूटी करते हैं उसमें से 4 घंटा ट्रैवल, कहां से ज्ञान योग होगा, और इतना थक जाते हैं। नुमा शाम का योग तो है ही नहीं ब्राह्मणों के जीवन में, कई नौकरी करने वाले अविद्या है टोटल, कोई लेना देना ही नहीं, इतना आप पीछे भाग रहे भाग रहे भाग रहे। और क्यों, और एक तरफ इच्छा है कि बहुत पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ करने की इच्छा है, पर रात को सोते 11-12 बजे, अमृत वेला कहां से होगा, और दिन भर में फिर भागते रहते हैं। हां सेवाएं बहुत करते हैं, परंतु ज्ञान नहीं, योग नहीं, तपस्या नहीं, ऐसी सेवा ज्यादा फल नहीं देगी। जिस सेवा में तपस्या नहीं है, वैराग नहीं है, इसके लिए यहां के धन के पीछे पागल नहीं होना है। जो धन को क्या मौत कीड़े रस्ट रंग ये लग जाए करप्ट एंड वेयर थीव्स, जो कि कोई चोर चुरा ले जाए, परंतु तुमको कौन से धन इकट्ठा करना है, स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करना है। ये स्वर्ग की बातें यहीं पर बहुत ज्यादा आई है क्रिश्चियनिटी में, किंगडम ऑफ हेवन किंगडम ऑफ हेवन किंगडम ऑफ हेवन, वो स्वर्ग आने वाला है, द किंगडम ऑफ हेवन इज अराउंड द कॉर्नर, बस अब आया कि आया, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य आने वाला है, तुम्हें स्वर्ग के राज्य में चलना हो तो पश्चाताप कर लो, अपने पापों का पश्चाताप करो। ये बात कई बार रिपीट हुई है, हिंदू धर्म से भी ज्यादा स्वर्ग आने वाला है ये बात क्रिश्चियनिटी में बहुत ज्यादा है। Where thieves do not break through nor steal, where neither moth nor rust doth corrupt, for where your treasure is, there will your heart be also. क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां क्या होगा, तुम्हारा मन होगा। यदि किसी बैंक में पैसे रखे हैं तो सारा ध्यान, अगर पता चल जाए वो बैंक कुछ हो गया लूट के लेके गया, योग करते करते क्या हो जाएगा, कोई कान में आके सुना दे कि तुम्हारे सारे बैंक लूट के चला गया कोई, तो क्या होगा, योग अच्छा हो जाएगा और तो क्योंकि जहां तेरा धन है वहीं मेरा तेरा मन भी लगा रहेगा। तो अलौकिक धन, आध्यात्मिक धन, स्पिरिचुअल वेल्थ, स्पिरिचुअल ट्रेजर्स, अलौकिक वर्षा, जो वर्षा है वो धन है, यहां जो मिलता है धन। और सबसे बड़ा धन है खुशी, सबसे बड़ा धन है प्रेम, सबसे बड़ा धन है ज्ञान, सबसे बड़ा धन है शक्तियां। इसको जमा ज्यादा करना है। वो स्थूल धन उसके पीछे पीछे आ जाएगा। स्थूल धन के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिसके पास सूक्ष्म धन ज्यादा है। अभी सतयुग छोड़ो, द्वापर कलयुग छोड़ो, अभी भी जिसने अपने आप को सूक्ष्म धन से भरा है, स्थूल धन भी अपने आप आ जाएगा। जिस सेंटर ने अपने आप को सूक्ष्म धन से भरा है, उस सेवा केंद्र में स्थूल धन अपने आप आकर गिरेगा चरणों में। मांगना नहीं पड़ेगा किसी से, सारे सहयोगी अपने आप आ जाएंगे क्योंकि आकर्षित हो गए वो। इसके लिए जिस सेवा केंद्र, जिस सेवाश्रम में प्यूरिटी बहुत ज्यादा है, अपने आप वहां की बहन को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने आप सब होता है। जहां ज्ञान का चिंतन होता है, ज्ञान में इंटरेस्ट बहुत है सबको, अपने आप सब सहयोगी हो जाते हैं वहां पर सब तरफ से। तो दो बातें आज देखी, एक तो फास्टिंग उपवास और दूसरा धन। तो हफ्ते में एक दिन निर्धारित करना है कि आज मेरा फास्ट है। कौन सी चीज आज नहीं करनी है जिसकी मुझे आदत पड़ गई है, सोशल मीडिया हो सकता है उसकी फास्टिंग, डिजिटल व्रत ले लेना। कभी इकोनॉमी का व्रत ले लेना कि आज सारे दिन भर मुझे भोजन बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करूंगा, लाइट वेस्ट नहीं करूंगा, पानी वेस्ट नहीं करूंगा। नहीं तो पानी कितना वेस्ट कर देते हैं बाथरूम में, कौन देखने वाला रहता नहीं है वहां, पानी बहुत वेस्ट करते। क्या करूं कि जिससे पानी वेस्ट ना हो, सेव वाटर। तो ये भी व्रत है, तो वाटर व्रत, इलेक्ट्रिसिटी व्रत, भोजन व्रत। हाँ, एक बहुत ज्यादा आसक्ति है और आज वही बना है, जिलेबी 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 और आज जिलेबी बनी। संयम बढ़ जाएगा और एक दिन न खाने से मर नहीं जाओगे। मरने की चिंता थोड़ी कम कर दो, कुछ नहीं होगा। परंतु ये दमन ना होना चाहिए, उसको उपवास जो भी हो सोच समझ कर किया हुआ उपवास हो, नहीं तो सारे दिन भर उपवास और रात में केवल ब्रह्मा भोजन ही दिख रहा है, ऐसा उपवास क्या काम का। नाश्ता क्या छोड़ दिया, सारा का सारा दोपहर के भोजन पर निकाल दिया, दो दमन हो गया वहां। तो एक तो उपवास और दूसरी बात बताई धन, ये दो चीजें चिंतन के विषय है। अच्छा, ओम शांति।